जय निज लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री शिष्य मद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। जय निज लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर शत श्री शिष्य मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय निज लीला प्रविष्णु विष्णु पाद शिष्य मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय परिब्रज का आचार्य त्रिदंड स्वामी कृष्ण मद भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जय। जय परिब्रज का आचार्य त्रिदंड स्वामी कृष्ण मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। अनन्न त्रिदंड पादगण की जय। रूपानुग गुरुवार्ग की जय। तपार्षद गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। क्षमागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि बोल।
मथुरा नगरी में रहते हुए भी अपने घर में ही श्रीमद्भागवत जी की चर्चा के लिए यदि कोई भी कायु या यदि कोई जानता रखने वाला कोई भी जीव है तो 24 घंटे कभी भी उनके घर में पहुँचता है तो श्रीमद्भागवत जी श्रीमद गीता जी के ऊपर जो भी प्रश्न लेकर जाता है उनके यथावृत्ति के अनुसार हमारे त्रिगुरी उनका समाधान करते हैं। ऐसे धन्यमंडल के मूर्धन्य विद्वान श्री मनोहरलाल शास्त्री जी यहाँ पर विराजमान है, सभापति के लिए उनका हम वरण करवाते हैं। बोलिए नारा कृष्ण
जो हमारी आंखों पर पहले ही नहीं करता बरसाती रहती है, भरत जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि कुछ दो तक संगतों के संगत प्रस्तुत करें।
स्वरूपमतस्याग्रजगुरिपुरीं माथुरीं गोस्तवातीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितिकृपया श्रीगुरुं संनतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तस्य कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। सप्रथम है अपने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद शिष्मद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में कोटि कोटि अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। परम पूज्यपाद हमारे सभापति महोदय बहुत कृपा करके यहाँ पर आए हैं, हमारे मथुरा के ये वैभव हैं। हम लोग दो तीन वर्षों से सारे विश्व में हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति का प्राण ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए विश्व के इस छोर से उस छोर तक हम लोग जा रहे हैं। आज विश्व के सभी लोग हमारे श्रीमद्भागवत के विचारों को सुनने के लिए लालायित हैं, गीता इत्यादि के विचारों को सुनने के लिए लालायित हैं। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, वैभव के शिखर पर वो बैठे हुए हैं, किंतु उनको तनिक भी जीवन में सुख की आशा नहीं है, इसलिए वो भारतीय संस्कृति की तरफ में वो ताक रहे हैं। इसे वो चाहते हैं कि हमारा जीवन भी सुखी हो, इसीलिए हमको बहुत आग्रह के साथ में संसार में ऐसे कोई समृद्ध राष्ट्र नहीं है जहां से हमें अच्छी तरह से बुलाया नहीं जा रहा, सभी लोग बुला रहे हैं और इसको सुनना चाहते हैं। गीता के कुछ उपदेश करीब करीब विश्व में सर्वत्र कुछ न कुछ आज वहां के में प्रचार हो रहे हैं।
किंतु भक्ति के जो गूढ़ रहस्य हैं इसको लोग बहुत लोग समझ नहीं पाते। कोटिश्वपि महामुने, कोटि कोटि लोगों में से एक को समझना भी बड़ा भारी कठिन है, तभी लोग विश्व के लोग चाहते हैं। सबसे पहले वे जानना चाहते हैं भारतवर्ष में जो सनातन धर्म है ये क्या चीज है। मैंने अभी दो चार जो बार गया हमने बतलाया, देह का धर्म सनातन नहीं है। एकमात्र कृष्ण एक सनातन पुरुष है, गीता इत्यादि में भी बतलाया गया है, भागवत में भी बतलाया गया। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौ प्रशाम जन्मित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। कृष्ण एक सनातन ब्रह्म है, परिपूर्ण ब्रह्म है। वेदों में उनके केवल चरण की कांति का केवल वर्णन किया गया है, उसी को ही प्रणाम और अष्टौ स्तुति की गई। उनकी महिमा को स्पर्श भेद नहीं कर सका, तैगुण्य विषया वेदा। इसलिए अप्राकृत जो स्वरूप जो कृष्ण है, सनातन पुरुष वही एक है, इसको सब लोग नहीं समझ पाए। और दूसरा जीव है एक सनातन, गीता नीचे में बतलाया गया, प्राणु असलो सनातन इत्यादि गीता में बतलाया गया। ये दो सनातन चीज है, मूल सनातन पुरुष कृष्ण है, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए जितने भी भगवत्ता के प्रकाश दिखे जाते हैं ये सब कृष्ण ही सबके सर्वोत्तम है। एते चांस कलापुन स कृष्णस्तु भगवान ईश्वर, जीव उनका नित्य दास है। कोटि कोटि जीव है संसार, पशु पक्षी की पतंग ब्रह्मा से लेकर के की पतंग तक, जितने भी पेड़ पौधे इत्यादि मनुष्य सब में जीवात्मा है। जीवात्मा है दो प्रकार की, एक मुक्त और एक बद्ध। बद्ध जीव हम लोग हैं इस संसार में जो भगवान को भूले हुए हैं, इसलिए जीव भी सनातन है, बद्ध होने पर भी सनातन है। और साधर्म भी जो जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है ये सनातन है। इसलिए दोनों के बीच में भक्ति जो है जो भगवान और जीव को जोड़ने वाली है, भय धातु सेवायाम जीवों का कृष्ण की जो सेवा है यही सर्वोत्तम सनातन धर्म है, जिसका गीता में प्रारंभ किया गया है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज मन मना भव मद भक्त इत्यादि में इसको इसकी अभिव्यक्ति की गई है। किंतु श्रीमद् भागवत में इसको चरम सीमा में बतलाया गया। यह गोपियों का प्रेम और गोपियों में भी श्रीमती राधिका जी का कृष्ण के प्रति महाभाव, इसमें भी रूढ़ अभिरूढ़ मादन मोदन इत्यादि जो भाव है ये सर्वश्रेष्ठ भाव है जो गीता में बतलाया, जिसको कृष्ण ने भी कहा न पारे हम निर्बद्ध संयुजन। गोपियों के इस प्रेम के बदले में कृष्ण उनको वो चीज दे करके प्रतिदान नहीं दे सके, इसलिए तीव्र ऋणी हो गए। इसलिए उन्होंने कहा न पारे हम निर्बद्ध संयुजन। इसकी थोड़ी सी झलक उद्धव संदेश में या वेणु गीत में, थोड़ी सी झलक गोपी गीत में, ये कुछ उसकी झलक मिलती है। ये गोपियों का प्रेम कैसा था, जिसको उद्धव जैसे व्यक्ति कृष्ण के मंत्री सखा बृहस्पति के शिष्य बुद्धि के अफुरंत भंडार ठा नहीं पा सके। ब्रज में आए गोपियों का भाव देखा और देख करके स्तंभित रह गए, कुछ दिन रहे समझने की चेष्टा की, बहुत दूर से प्रणाम किया बंदे नंद ब्रज श्री नाम आसाम हो चरण निशा में हमेशा, इसे आगे कुछ नहीं करो। गोपियों के एक तनिक भाव को भी लेकर के नहीं गए, लौटे कुछ समझा उन्होंने महात्मा गोपियों का। उन्होंने कहा कि आज गोपियों का यह विरह देख करके हमारा जन्म सार्थक हो गया, और गोपियों की कैसी कैसी बनी है। ये गोपी प्रेम ही सनातन धर्म की अंतिम कड़ी सीमा है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं, यही सनातन धर्म। यद्यपि हमारे यहाँ अतिथि भव माता पिता का आदर करना, समाज में गरीब लोगों की सहायता करना, गद्दी के और हरिश्चंद्र इत्यादि के आदर्श इत्यादि जो देखे जाते हैं, सम दम तितिक्षा इत्यादि जो देखे जाते हैं, ये प्रारंभिक स्टेज सनातन धर्म के हैं, किंतु बहुत दूर से ये लोग लक्ष्य करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि गोपियों का यह प्रेम ही ये सनातन धर्म की चरम सीमा है। लोग तो समझेंगे नहीं, किंतु कुछ लोग जानना चाहते हैं हमारे इन सब विषयों को, इसलिए हम लोग जाते हैं और सुन करके बड़े लोग प्रसन्न होते हैं, इसको काफी लोग ग्रहण करते हैं। इतना ग्रहण नहीं करने पर भी हरिनाम तो ग्रहण ही करते हैं, सदाचार तो अवलंबन करते ही हैं। आज विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर कि कृष्ण की के प्रति लोगों की भक्ति नहीं है, हरिनाम नहीं करते हैं, सदाचार संपन्न होकर के तिलक इत्यादि धारण करते हैं और भी कुछ जानना चाहते हैं। इसलिए संक्षेप में मैंने कहा, इसी विचारों का प्रचार करने के लिए हम लोग वहां जा रहे हैं अभी, इसीलिए हमने इन सब लोगों को बुलाया है। ये लोग हमें आशीर्वाद करें और शक्ति प्रदान करें कि इन लोगों की इन सब बाड़ियों का हम विदेशों में हम लोग कुछ प्रचार करें। यही बोल करके अभी अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। पीछे और
भारत सिंह के चरणों में बारम्बार वंदन करते हैं और यही प्रार्थना संक्षेप प्रवण भी करते हैं कि हमारे गुरुदेव देश विदेश में जाकर श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहे और सभी जीवन का जो उद्धार का मार्ग है उस मार्ग को दिखाते रहे और सदैव ही हमारे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि करते रहे। इन सबों के साथ भारत जी के चरणों में बारम्बार वंदन करता हूँ। अब आप लोगों के संगत श्री कृष्ण कथा ब्रह्मचारी जी से बड़ा बड़ा कार्य से प्रार्थना करते हैं।
बांग्ला से
ये बंगला भाषा में बोलती है, दो शब्द जो भी कुछ कहना चाहे।
शुभानंद ब्रह्मचारी का नाम लिखी है, शुभानंद ब्रह्मचारी एक हमें दाड़ी बोल एक माइक दे यही ले
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदिया गुरुपाद पद्म मित्रलाभ विष्ण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले हमार साष्टांग दंडवत पंच जनम तत्पर पूज्यपाद श्रील नारायण महाराज जी एवं सभापति महोदय अन्य वैष्णवबिंद श्री चरण हमार साष्टांग दंडवत एवं श्रोती मंडल कर जनम हमार आंतरिक धन्यवाद।
उनको ले आओ, उनको बैठाओ। कमाल चंद्र बोल
अद्भुत सभा हमें कि बलवार जन्म आदेश कर पृथिवीर मध्य ये सप्त द्वीपर मध्य देखा जन्मद्वीप प्रतिष्ठा श्रेष्ठ एवं जन्मद्वीपर मध्य सुधाम वृंदावन श्रेष्ठ एवं नवद्वीप श्रेष्ठ वाला हे जन्मद्वीपर अंतर्गत जे सकल महादेश रहे से महादेश मध्य प्राच्य और पाश्चात्य विधि भाग करा थे। भगवान অনন্ত যে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কারণ সর্বেচ্ছা বুদ্ধিমত্ত মানুষ, এজন্য মানবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি স্বয়ং রূপ, অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মধ্যে ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং তিনি অনন্ত জীব সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মানবই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। সেই সকল বদ্ধ জীবজনকে কি করে তার পাদপদ্মে নিজা জাত সেবাকে নিয়োগ করতে পারেন, সেই জন্য তিনি নিজে দশ দিয়ে রেখে বা তা তিনি দশকে জনশক্তির দ্বারা তিনি জগতে প্রকাশ করেছেন, এবং তার দ্বারা অনন্ত শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছে। তো শাস্ত্র লঙ্ঘন করলে দেখা যায় যে শাস্ত্রের মধ্যে বহু প্রকার দর্শনাদি রয়েছে, যে সকল দর্শনের মধ্যে ছয়টি দর্শনই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, ন্যায় সংখ্য বৈশিষ্ট উত্তরমীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা। এই সকল দর্শনের মধ্যে উত্তর মীমাংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ উত্তর মীমাংসাই হচ্ছে বেদান্ত দর্শন। এখন শাস্ত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কয়েকটি পথ রয়েছে, একটা কর্মের পথ, একটি জ্ঞানের পথ, একটি যোগের পথ এবং একটি ভক্তির পথ। যারা কর্মকে স্বীকার করেন তাকে কর্মী বলা হয়, যারা জ্ঞানকে স্বীকার করেন তাদের জ্ঞানী বলা হয়, যারা যোগকে স্বীকার করেন তাদেরকে যোগী বলা হয়, যারা ভক্তিকে স্বীকার করেন তাদেরকে ভক্ত বলা হয়। এই কর্মী যোগী জ্ঞানী ভক্তের মধ্যে ভক্ত একজন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় বলেছে। আবার এই ভক্তের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভাগ রয়েছে, এবং এই মানুষের মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে, এবং সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্রহ্ম মাধ্য গৌরী সম্প্রদায় হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদ সর্বশ্রেষ্ঠ। চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মতবাদ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের ভাব সমস্ত মতবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মতবাদ এবং তার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে পূরণ করবার জন্য তিনি স্বয়ং এসে তিনি নানা রকম তার নিজন দ্বারা বহু শাস্ত্র তিনি স্বীকার করেছেন। এই পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের মধ্যে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে নাস্তিকবাদ রয়েছে, এবং সেই নাস্তিকবাদ কিছু কিছু সামান্য আস্তিক রয়েছে, কিন্তু প্রাচ্য জগৎটি দেখা যাচ্ছে বেশি পরিমাণে সেখানে আস্তিক রয়েছে, এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মাটি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রাচ্য অঞ্চলে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন, এবং আবির্ভূত হয়ে তিনি তার চিন্তন দলের তত্ত্ব তিনি স্থাপন করেছেন এবং তিনি প্রচার করেছেন। পাশ্চাত্য জগতে চৈতন্য মহাপ্রভুর মতকে প্রচার করার জন্য স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর তিনি নদীয় শিলা প্রভুপাদ এবং গুরুপাদ পদ্ম এবং বর্তমান যে গৌরীয় গ্রন্থ সমিতির তিনি সভাপতি, যে ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি, তাকে তিনি শক্তি সঞ্চার করে তিনি সেই গৌরীয় সম্প্রদায়ের অসন্তোষভাবে বাদ তত্ত্বের যে সূক্ষ্ম বিচারধারা তাকে প্রচার করার জন্য তিনি প্রাচ্য জগতে তাকে প্রেরণা দিয়েছেন। তিনি কয়েক বছর আজ দু তিন বছর যাবৎ সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর কথা তিনি প্রচার করে এসেছেন, এবং সেই ভগবানের কথা প্রচার করার জন্য যে পাঠ বলেন কথ আমি বারবার তাকে প্রণাম করি এবং তিনি তাকে শক্তি দিন। ওনার বয়স 75 বছর হয়েছে, তিনি ইহ জগতে আরও 25 বছর তিনি থাকুন, এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদ তিনি এবং তার ইচ্ছা পূরণ করুন। এর জন্য মজুয়া গুরুপাদ নিকট আমি বারবার ধরে তাকে প্রণাম রাখি, তাকে দীর্ঘজীবী হন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম। বন্ধু সকলের শুরুতে আমি তার মধ্যে দেখুন উদ্ভাবন
ब्रह्मचारी जी द्वारा कल्याण प्रवचन आप लोगों ने श्रवण किया।
और इसके उपरांत नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी हर समय उपलब्ध रहने वाले अपने वरिष्ठ पूज्य श्री गोपेश्वरनाथ जी सतगुरु जी से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र की विदेश यात्रा मंगलमय हो, उसके दूसरा
परम पूजने सातस्मरणी महाराज जी, परम सत्य मथुरा की विभूति पंडित पवार शास्त्री जी, यहाँ विराजमान परम बदनी संत समाज विद्वज्जन भाइयों माताओं बहनों, हम लोग सामाजिक कार्यों या सांसद कार्यों में व्यस्त रहते हैं। महाराज जी जैसे वंदनीय पुरुष की कृपा होती है, कभी कभी भगवत नाम का स्मरण स्मरण हो जाता है। मेरा तो महाराज जी के चरणों में आने का हेतु भी एक सांसारिक कार्य था, लेकिन यानी कौन सा मैंने मेरा पुण्य था कि जब से मैं महाराज जी के चरणों में आया, तब से महाराज जी जब मथुरा पधारते हैं तो कभी न कभी इस पावर जी का स्मरण जरूर कर लेते हैं, और मैं भी महाराज जी के दर्शन न हो तब तक शांति नहीं मिलती है। ये मथुरा एक पुण्य भूमि है, हम विश्व के तमाम श्रद्धालु इस पुण्य भूमि से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पधारते हैं, लेकिन मात्र महाराज जी का ये केंद्र है जो इस समय इस मथुरा की पवित्रता को, एक मथुरा के पवित्र जो संदेश है धार्मिकता का, उसका यहाँ रह के प्रचार प्रसार करता है। अर्निक भगवान नाम संकीर्तन, समय समय पर कथा सप्ताहों का आयोजन और साथ में लोकोपकारी कार्यों की प्रेरणा भी महाराज जी चरणों से मिलती है। महाराज जी क्षमा करेंगे, जब महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होता है तो मैं कभी प्रार्थना कर देता हूँ, तो महाराज जी बड़ा संकोच होता है कि इस अवस्था में भी आप कष्ट सह करके भी इन पामर जीवों को दिशा निर्देश करने के लिए आप स्वयं इतना कष्ट सहन कर रहे हैं। विदेश जाना आना से महाराज जी का कोई जो है, हम लोग कल्पना कोई नहीं करता है कि महाराज जी का कोई उससे कोई हेतु है या महाराज जी कोई प्रसन्नता होती होगी, लेकिन ऐसी भक्त वेदांति जी के गोलोकवास के बाद में हम सभी लोग जानते हैं उनने भगवत नाम का प्रचार प्रसार और चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित सन्मार्ग का जो प्रचार प्रसार किया था, उनके केंद्र तो हैं, लेकिन एक जो गति थी, जो आनंद आता था किन्हीं कारणों से, उसमें थोड़ी न्यूनता जरूर आई। उनकी प्यासा अपने आप जल को तलाश कर लेता है, तो यूरोप के लोगों ने वेदांति के बाद में एक महाराज जी के चरणों में ही ऐसी शांति का स्रोत ढूंढा, तो वह अर्निक भगवत नाम का पान करके अपने जीवन को धन्य कर सके। हम इस पुनीत अवसर पर, क्योंकि पहले भी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हमारे यहाँ तो सही रूप से जगह जगह मंदिर हैं, जगह जगह संतों के आश्रम हैं, लेकिन विदेशों में भी एक लालसा है, भौतिक जीवन से लोग उभरे हुए हैं, उनको सब कुछ प्राप्त है लेकिन जो उनको शांति प्राप्त नहीं, तो जहाँ छांव होती है वहाँ राह होती है, उन लोगों ने महाराज जी के चरणों में अपनी विश्रांति खोजी है। महाराज जी उनको जितनी चाह है उससे ज्यादा आवश्यकता हमको भी महाराज जी की, हम भी एक क्षण को भी महाराज जी को जहाँ से विलग हों उनसे, तो हमको भी बड़ा कष्ट का सभी को अनुभव होता है। अभी हम लोग जाते होंगे, सभी लोग परिचित होंगे, दुर्वासा ऋषि मंदिर का जो जीर्णोद्धार कार्य है, तो ये ऐसे प्राचीन तीर्थ है वहाँ ईशानपुर जिसकी तरफ किसी के ध्यान नहीं था, तो महाराज जी का ये भी एक जो है एक सोचने का विषय है कि जो प्राचीन तीर्थ हैं, पवित्र स्थल हैं, उनका भी जीर्णोद्धार हो, उनकी भी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा हो, तो इन शक्तियों में महाराज जी लगे हुए हैं। संग में वहाँ के जो सौभाग्यशाली जीव हैं, जो कुछ उनके पुण्य उदय हैं कि महाराज जी के वचनामृत से, महाराज जी के आशीर्वाद से वो भी भवसागर को पार करना चाहते हैं, हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं, पुनः पुनः निवेदन करते हैं तो महाराज जी उनका उद्धार करें, उनको दिशा निर्देश दें। संग में मथुरा और ब्रजभूमि के उनके जो चरण सेवक हैं उन पर भी कृपा करते रहें और हमको जो हम भटके हुए हैं सांसारिक कर्मों में उनको भी ऐसे ही भगवत नाम का स्मरण कराते हुए दिशा निर्देश देते रहें। पुनः पुनः महाराज जी चरणों प्रणाम करता हूँ।
विद्वान सर की भागवत कथाकार सर्वेदांताचार श्रीमद भागवत एवं गीता के ज्ञाता पंडित श्री बलवाना जी के साथ जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि अपने पुस्तक पर कई भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत करें।
नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वताम विजूर काष्ठाय मुहुक्तयोगिनम निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणे रंशते नमः। श्री राधा वदनेन्दु श्री पान मत्ति चकोरकम् गोवर्धन धरम बंदे ब्रजराज किशोरकम् सर्वादौ सर्वदेवाधिपतिम् केशवम् प्रणम्य प्रातस्मरणीयाः श्री गुरुचरणाः लोक बोधन तत्पराः साधियांसाः साधवः भक्तवेदांत नारायण महाभागाः अथ च लोक सेवा तत्पराः स्वनाम धन्याः श्री गोपेश्वर जी महामहोदयाः अथ च सन्मार्ग मनोवर्तिनः साधियांसः साधवः वरीयांशो विद्वांसः प्रियबान्धवाः मातरो भगिन्यश्च। बड़े ही आनंद का विषय है कि जब यह जीव परमात्मा के विषय में अपने भावोद्गार प्रकट करता है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा पदार्थ है जिसने व्यास चिंता का समापन किया। लोकहितैषी व्यास जी को लोकोपकारिणी चिंता हुई जिसका समापन नारद ने भागवत की रचना पर ही संपन्न किया। नारद जी के उपदेश देने के बाद भी व्यास जी ने समाधि लगाई तो समाधि में चार तत्वों का दर्शन किया। अपश्यत पुरुषम पूर्णम चालू भागवत में पूर्वम पाठ है पर श्रीमद् बल्लभाचार्य महाराज इसे पूर्णम मानते हैं। तो पहले तो अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम तत्कृतं चाधिपद्यते अनर्थो पशमं साक्षाद भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वां चक्रे सात्वत संहिताम। इन चार श्लोकों में ये बताया सबसे पहले व्यास जी ने श्री केशव भगवान का दर्शन किया और उसके बाद माया का दर्शन किया जो ब्रह्म के पास जाने वालों को रोक देती है। उसके बाद तीसरा जीव का दर्शन किया जो जीव यथार्थता को माया के वशीभूत होकर के अयथार्थता की ओर दौड़ता है और अयथार्थता पदार्थों को यथार्थता में परिणत करता है, यह मायाकृत भ्रांति से का पात्र बन जाता है। तो अब जीव ब्रह्म की तरफ जाएगा तो माया रोक देगी, तो अब माया से तरने का क्या उपाय है? तो देखा कर्मयोग की तरफ जाएं या ज्ञानियों की तरफ जाएं या साक्षात भक्ति योग का अनुसरण करें। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ज्ञान पुरुष है और माया स्त्री है। कैसा भी पुरुष हो, स्त्री के मोहक स्वरूप पर मोहित हो जाता है, परंतु नारी नारी के स्वरूप पर मोहित नहीं होती है। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह चरित्र अनूपा। नारी के रूप पर नारी मोहित नहीं होती है, इसलिए माया के संपूर्ण वैभव को दबाने वाली यदि दूसरी नारी है तो वो भक्ति महारानी की है। तो इस भक्ति को बताया कि अनर्थोपशमम साक्षात भक्त योगम। ज्ञानियों के विषय में सप्तशती जो देवी के भक्त जिसे पाठ किया करते हैं उसमें बताया ज्ञानिनाम चेतांशी देवी भगवती हिसा बलात् आकृष्ट मोहायो महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी मोहित करने वाली ये माया को समझकर व्यास जी को दर्शन हुआ कि भक्ति ही माया से बचा सकती है, इसीलिए यह भागवत का नाम भक्त संहिता बनाया। ये भक्त प्रदायिनी है, भागवत के सिवाय भक्ति की प्राप्ति होना अन्यत्र संभव नहीं है। तो भक्ति कौन सी की जाए? तो उपनिषद में लिखा स आत्मानम द्वेधा अपातयत पतिश्च पत्नीश अभवताम। उस परब्रह्म ने अपनी आत्मा को दो भागों में विभाजित कर दिया, आधा भाग कृष्ण और आधा भाग श्री राधा रानी की। तो महाराज ये ब्रजेश्वरी भगवानु नंदिनी किशोरी राधा और कृष्ण इन दोनों में कोई अंतर है ही नहीं, एक गौर तेज है और एक श्याम तेज है। भगवान से पूछा कि महाराज आप भी गौर बन जाते, आप श्याम क्यों बने? और यदि आप श्याम बने तो मुझे भी श्यामा बना देते। तो भगवान ने उत्तर दिया कि आप स्वर्णवत हैं और सोने की जो परचय है वो कसौटी पर घिसकर होती है। जब बड़े बड़े शराब कसौटी पर काले पत्थर पर सोने को घिसते हैं तो उस स्वर्ण रेखा से स्वर्ण का परिज्ञान होता है। इसीलिए श्री राधा का जो प्रेममय स्वरूप है वो कृष्ण की कसौटी पर ही घिसा जाए, इसलिए मैं अपने को श्याम बनाया और आपको गौर बनाया। पर है राधा तत्व और कृष्ण तत्व में कौन बड़ा और कौन छोटा, इस प्रपंच में पड़ना भ्रांति है क्योंकि दोनों ही एक हैं। इस प्रकार वर्णन किया। अभी मैं भक्त वेदांत नारायण जी के विषय में कुछ कह रहा था। हमारे यहाँ वेदांत दो है, एक ज्ञान वेदांत और एक भक्ति वेदांत। तो मैं जब भी आता हूँ इनका नाम ध्यान आते ही मुझे भक्ति का वेदांत याद आ जाता है। ज्ञान वेदांत की उपनिषदों में चर्चा अलग है, परंतु भक्ति वेदांत की जो चर्चा है वो तो महाराज बड़ी रसात्मक चर्चा है। इसीलिए भागवत को रस बताया, पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूमि भावका। अब एक प्रश्न ये मैं बताना चाहता हूं, स्त्री सुखदेव जी की आराध्य श्री राधा रानी थी। अब उनको प्रत्यक्ष नाम लेकर प्रणाम करें तो सुखदेव जी को 6 महीने की मूर्छा आ जाती है, तो परीक्षक का हित बिगड़ जाएगा और बिना राधिकारी को प्रणाम किए बिना वह आगे भागवत का प्रवचन कर नहीं सकते। तो मैंने जो भी मंगलाचरण किया श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इसमें श्री राधा सहित कृष्ण के प्रणाम का वर्णन किया। नमो नमस्ते तू ऋषभाय सात्वतम, सभी सात्वत भक्तों के ऋषभ श्रेष्ठ श्री कृष्ण को मैं नमो नमः बारंबार नमन करता हूँ। विदुर काष्ठाय मुहूर्तयोगिनम, या कुयोगिनम की 2 व्युत्पत्ति की, या तो कुत्सिता योगिनस्तु योगिन तेषां की योगिन विदुर काष्ठा, भगवत काष्ठा जिगपि दूरतर, भगवान की दिशा भी उनको योगियों को दूर है। योगिना मद सर्वेशम मदगते नान्तरात्मना शुद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मत, इति गीता वाक्य। अथवा सू शब्द पृथ्वी वाचक है, कौ पृथिव्याम ये योगिना तेषां कृते श्री कृष्णस्य राधाया दिगति दूरतरा, दिशा भी दूर है। कैसी है वो कि निरस्त साम्यात स्वयं राधसा, यहाँ राधा को राधस शब्द से प्रयोग किया। कैसी है वो राधा कि निरस्त साम्यात स्वयं, न जिसके कोई बराबर है और न जिसके कोई अधिक है। ऐसी श्री किशोरी जी राधा जी के संग ब्रह्मणी ब्रह्म स्वरूप जो यह मंदिर है उसमें श्री राधा के साथ नित्य विहार करने वाले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मण रमुषते नमः, रमुषते चतुर्थी एक वचन है, उनसे साथ रमा करने वाले श्री राधा कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा सुखदेव जी प्रणाम करके मंगलाचरण में फिर आगे वर्णन करती है। अब प्रसन्नोपात हम ये लें कि भक्त वेदांत जी जो बार बार हमें छोड़ करके विदेश जाते हैं, विदेश वाले तो प्रसन्न होते ही हैं, इनका बार बार यहाँ से जाना क्यों? तो श्रीमद् भागवत के आधार पर जब गर्गाचार्य गोकुल में आए तो नंद बाबा ने जो निर्णय लिया वही निर्णय हम भक्त वेदांत की यात्रा में समझते हैं। जो अल्प बुद्धि उसी का 2 मिनट से संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। महद विचलनम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। महात्मा लोग जो अपने आश्रम या अपने घर से निकलते हैं तो उनके निकलने का उद्देश्य, उनके निकलने का तात्पर्य क्या है? यह नंद बाबा कह रहे हैं कि नृणाम मनुष्यों के और गृहिणाम जो गृहस्थाश्रम में पड़े हुए हैं, दीन से तसाम जिनका चित्त उस दीन दयालु की कृपा की अभिकांक्षा के लिए दीन बन गया है, ऐसे लोगों पर कृपा करने के लिए निःश्रेयसाय माने कल्याणाय, उनके ऊपर कल्याण स्वरूप भगवान महात्माओं को प्रेरणा देते हैं और वो अपने स्थान को छोड़कर उन दीन भक्तों के कल्याण के लिए विदेश यात्रा किया करते हैं। तो निःश्रेयसाय भगवन कल्पते महद विचलनम, अन्यथा किमपि कारणम नास्ति, अन्यथा और कोई उसमें कारण नहीं हो सकता है। तो अंत में हम केशव भगवान से प्रार्थना करें और यह बात कहें कि महाराज ये शीघ्र ही समुद्धाराय भक्तानम, समुद्धाराय भक्तानम विदेशे वसतम तलौ यात्रां कृत्वा सनायन्तु भक्ति वेदान्तु साधवः। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो विदेश में उदर के लिए निवास कर रहे भक्त हैं, उन भक्तों के सम्यक उद्धार के लिए कलयुग में उनका भी उद्धार हो जाए, इसीलिए आप अपनी शोभन मंगलमयी यात्रा को शीघ्र समाप्त करके इस कृष्ण जन्मभूमि में शीघ्र ही वापस लौटे, ऐसी हम कामना करते हैं। अंत में थोड़ा सा और कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। मथुरास्था वयम सर्वे, मथुरास्था वयम सर्वे केशवम प्रार्थयामहे, यत्कृपातो हि भवताम स्वास्थ्यम नित्यम विवर्धताम। हम मथुरा के स्थित जितने भी भावक और आस्तिक ईश्वर को मानने वाले यहाँ के जन समुदाय हैं, वो सभी मिलकर हम केशव भगवान की प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा से आपका विदेश जितने दिन रहे उतने दिन शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। और यही हम यमुना जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को बढ़ाते हुए वहाँ का जन कल्याण करते हुए शीघ्र पुनः हमें आकर दर्शन दें। इन कामना के साथ मैं अपने लघु वक्तव्य को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ यमुना के किनारे रामघाट पर रोज थोड़ा प्रवचन देता हूँ, उसका समय होने वाला है, इसलिए मैंने महाराष्ट्र से आज्ञा लेकर के पहले बोल दिया हूँ। मैं तो यहाँ अंतिम 9 बजे तक रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र मुझे आज्ञा दे।
आपको भी जाना पड़ेगा उनके साथ।